नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ द फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। जो लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3,300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जांच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।